ये खिन्न हो जाते हैं और हजार कृष्ण चेष्टा करते हैं, बीरा बृंदा बंसी सब हार मान जाते हैं, उसमें कोई से कोई काम नहीं होता। तब वो क्या करते हैं अंत में, अंत में तब सुगंध को बताते थे, जो काम उन लोगों से नहीं हो पाता है ये काम उनसे सुगंध से। इसी तरह से महाप्रभु जी को जो जितने हैं वहां सब संतना देने की चेष्टा करते हैं, संतना नहीं, सबको संतना देने के लिए सुगल वैसे इनको महाप्रभु समझे। मैंने राजा जी के भाव लेकर के महाप्रभु का भाव विशेषकर अंतिम समय गंभीर लीला, उस समय यह राधिका जी बैठी है ऐसे समय, तो वहां पर बीजा भूमिका इत्यादि जितनी है परंतु धनुषा हार मान गई। उस समय कृष्ण को दुखी हो देख करके सुगंध को चिंता, अरे तुम घबराता क्यों हो, मैं अभी चुटकी बजाते हैं सब काम कर, बसाते साथ में सुगंध चल दिए और जावत चले गए। वहां पर वो गोबर कंडे बना रही थी, अभी कहां आ गया मुआ, बुरा बुरा में क्या कहते हैं, मरे में क्या कहते हैं, क्या डाली देते हैं, मुझे तुमको कहो कोई काम नहीं, यहां पर क्यों आया गया, क्या जरूरत है तुमको आने, तो ये तो मजे हुए खिलाड़ी थे, इन्होंने कहा कि हमारा बछड़ा हो गया इसको ढूंढने के लिए, तो तुम्हारा बछड़ा हमारे घर पर रखा है तो हो भी सकता है, तुम्हारी भी गैया जाती है, बछड़े भी जाते हैं, हम लोगों में मिल जाते हैं, हो सकता है कि यहां पर चला आया हो, कहीं नहीं नहीं हमारा बछड़ा तुम जाओ, अच्छा तो मैं जाता हूं तुम उसको किंतु प्यार से पास पानी तो पिला देगी, तब उसको गया है, अच्छा जाओ हमारे घर में पानी पी लो, तब उनका आदेश हो गया तो घर में चला गया। वहां पर सखियों के साथ में श्रीमती जी थी, उन्होंने कहा कि मैं पानी पीने के लिए आया, बछड़ा खोदने के लिए आया, तो आपके विरह में कृष्ण मर्म कर्ण जैसे होगा, यदि आप नहीं मिली तो वो जरूर खत्म हो जाए, इस संवाद को देने के लिए मैं चलाती चतुराई से, तो मैं क्या करूं कैसे जा सकती हूं, क्या ऐसा बात करो हमारा तुम्हारा दोनों का रूप एक समान है देखने में, तो तुम अभी सुगंध बन जाओ, हम तुम बन जाओ और मैं तुम्हारा रूप लेकर के तुम्हारे कपड़े लेकर के मैं राधा बन जाता हूं, आप तुम बन जाओ सुगंध, मैं बन जाऊं, बस अपने कपड़े लगते सब उनको दे दिया और उनके कपड़े पहन लिए, पहन लिए तो किंतु छिपेगा कैसे भाव, तो अपना बर्तव्य छिपाने के लिए उन्होंने बछड़े को यहां पर गोदी में ले, जैसे कोई मौसम थे, जब ले लिया तभी करके जब चलने लगे, तो जब दरवाजे पर आजकल बछड़ा तुम्हारा नहीं लाते, ये कि तुम्हारे घर में ही हमारा बछड़ा था, ठीक है वहां जाकर के कृष्ण से बोले, उन्हीं का स्वर सुगंध का स्वर जैसा स्वर कर वो तो आ नहीं सकती, बड़ी मुश्किल है, चारों तरफ में बहुत कड़ा तारा, तुम नहीं जा सकते किसी तरह से भी नहीं जा सकते, इसलिए वो आ नहीं सकती, आप जैसा देखो कृष्ण और किन्न, फिर बातों बात में फिर पता लगाया, तब देखा कि ये तो स्मृति राधिका जी, फिर उनसे मुझे मिलने के बाद में फिर उसी रूप में रात हो गई, फिर ना जाने कैसे घर लौटी क्या हुआ, फिर तो इस प्रकार से सुगल जी कृष्ण की सहायता का दोनों में मिलाते हैं, मधु मधुर मिशायन दो भाषितायन सुख सुभाषा भूषा सुगल सुख मपेता दूतिकानंद सह, दूतिकानंद वृंदा जी उनके कंधे पर हाथ रख सकते, दूतिका नस्त हस्ता और सुबल सुखम उपेता, उपेता मैंने उनके साथ आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे सुबल जी महाभाव से युक्त होकर के राधा कृष्ण की सेवा करते और उनको सांत्वना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुबल जैसे कृष्ण सुखों के सहाज्य हैं, गौसुख दान में देते हैं। राय रामानंद जी ठीक उसी प्रकार से पूरे देश है राधा वृंदा सहाय प्रधान कैसे स्वरूप को सहन जाते प्रभु कैसे स्वरूप काम होते जैसे उनके काम को रखते। ये सब चीजें जो हैं भाव भक्ति होने पर उसकी अंतिम स्थिति में ये सब कथाएं कही और सुन जाए। इसलिए ऊपर से पढ़ करके कोई भी बेल फल को कौवे सुखपाती कोई भी ठुकरा नहीं सकती बेल को, ऐसे ही बेल फल ठुकराना मुश्किल है, उसके भीतर में प्रवेश करना कठिन है, उसके भीतर कैसे कैसे जाती वो वही समझेगा जो उन्होंने की कृपा हो और सब समय इनका अनुशीलन करता है वो रुक सकते। इसलिए सदा पुस्तक नहीं है, इसलिए सब चीजें इसमें। इसके बाद में रघुनाथ जी का यह चरित्र, चरित्र में सब एक इस प्रकार से ये दोनों उनके अकॉर्डिंग इस कथा को पहले उन्होंने वर्णन किया। इस प्रकार से रघुनाथ जी का मिलन महाप्रभु जी कैसा हुआ इसको ये वर्णन हम लोगों का वर्णन करने का यही विषय है और इसी में हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। पूरे शांतिपुर रघुनाथ जो है उसको देखा था जो दो बार मिला शांतिपुर में इनका देखा नहीं तो पूरे शांतिपुर रघुनाथ भक्त जब आई महाप्रभु के साथ कविताएं सिखाए भजन करने की बड़ी लालसा है बहुत बड़ी लालसा हम लोगों जैसा नहीं तीव्र लालसा है हम लोग को बहुत काम होती है बहुत कामना है बहुत कामना है बहुत वासना है संपूर्ण से इच्छा नहीं और उनके अंदर में संपूर्ण रूप से इच्छा है। इसलिए रघुनाथ जी उसी प्रकार से महाप्रभु जी के पास वो त्याग लेकर के वैराग्य लेकर के महाप्रभु के चरणों में रहना चाहते थे किंतु महाप्रभु पिता को विचारे सिखाई गए महाप्रभु जी ने उनको सीख रहा है वही शिक्षा हम लोगों को सीखना चाहिए। प्रभु सिखाते थी हो निजे भरे जाए उन्होंने काम बरकत बया करना पर लोग दिखाई जाए यथाजोग्य विषय योग्य अनासक्त परिणाम अंतरकरण निष्ठा बाह्यकर व्यवहार लोक व्यवहार अतिरात कृष्ण कुमार परिजय निष्ठा बस इतना ही कहा यही चार लाइन से पहले का मरकत बाजार के छोड़ो छोड़ो घर में लौट घर में अभी देखा जन परिपक्व नहीं अभी बालक है नहीं तो वो तो बालक नहीं है वो तो नित्य सभी है किंतु लौकिक रूप में शिक्षा देने के लिए महाप्रभु जी आए मानव रूप छोटा सा बच्चा है इसलिए वो ऐसा कर
आते ही हम लोग तो रख लेते हैं, और होता है इसका परिणाम क्या होता है, कला परस्पर होने लगता है, वो जो पहले जो सुप्त वासनाएं होती है वो निकलने लगती हैं, उसका स्वरूप जो क्रोधी है कामी है वो पहले नहीं मालूम होता, किससे मालूम होने लगता है। वो लोग द्वेष करने का अधिकारी नहीं है, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अनुग्रह करके इन लोगों को भी स्थान देने की। अच्छा ठीक, आजकल ऐसी शिक्षा ही नहीं, इसलिए यहां पर शिक्षा, किंतु निष्कपट तो होना होगा हम लोगों को, तरह तरह की अर्थ की अभिलाषा, संसारी कामनाएं वासनाएं, रघुनाथ दास को बचपन से ही इतना बड़ा भागीदार थे, ऐसी सुंदर स्त्री, इतनी प्रतिष्ठा, उषा प्रबुद्धि, मुसलमान बादशाह को भी उन्होंने अपने पिताजी से मिल करवा दिया, कैसे उषा प्रबुद्धि थी, किंतु उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनकी एक वासना कृष्ण कैसे मिलेंगे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, बल्कि महाप्रभु जी के पास में आए तो महाप्रभु जी ने कहा जैसे कृष्ण ने तुमको ये विषय रूप से निकाल दिया, तो उन्होंने क्या कर, मैं कृष्ण को नहीं जानता, आपकी कृपा से ही मैं, महाप्रभु जी उनके गुरु रूप में है और आराध्य गुरु है, गुरु रूप में उनको संसार से निकाल कर उनकी कृपा से भी हुआ, तो उनके अंदर में कोई भी कामना वासना कुछ नहीं थी। ऐसे ही हम लोगों के अंदर में कोई भी कामना वासना इत्यादि न रहे, और भजन करने की एकमात्र लालसा है ये कृष्ण कैसे मिलेंगे, तब तो मिलेंगे, और नहीं तो वो भूत के भूत हैं, उनसे बड़ा कृष्ण में कोई भूत नहीं, ठग के भी ठग हैं, ये जथा नाम प्रपजन के काम तो फिर भजन, ये सब तो हम लोग को समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो परिवर्तन का राज्य छोड़कर के स्वाभाविक बैठक, पहली बात कही जीव लोग जीवों को ये पहले मरकट बैठक संसार छोड़ देना, किंत विषय बात नहीं छोड़ते, मरकट बैठक यथा योग्य विषम हो गया, अनाशक्त किया, अनाशक्त होकर के जीवन के निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना संग्रह, हम लोग को ये सब शिक्षाएं सब समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, छोड़ना क्या चाहिए, विषय छोड़ना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य और बात दे मन दे क्रोध दे जीवा दे उतर दे उपस्थ दे और प्रत्याहार प्रयास कष्ट प्रजल को मात्र जनसंघर्ष लौलंक, ये सब चीजों को छोड़ने की चेष्टा, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे त्याग, ये चीजें यदि नहीं छोड़ी तो भगवत भजन होना बड़ा कठिन। गुरु वैष्णव भगवान सौंप सकते हैं कि उपदेश दे सकते, करना तो हमको पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा, पालन करना पड़ेगा हम, और क्या करो अंतर करो निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार संसार में रहते हुए ऐसा ही नहीं, लोक व्यवहार में नहीं क्या माता पिता को आदर करो, गुरुजनों को वहां पर ठीक से रहो, क्रोध से बात मत करो, झूठ मत मत बोलो, यहां तक सब व्यवहार रखो, बाहर और भीतर में एक व्यवहार, अंतर है बाह्य समय व्यवहार, अमानी मानद ये ऐसा व्यवहार रखो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो लड़का है लड़की है कोई भी हो, साधक मात्र को ऐसी शिक्षा, धर्म करते बोलते हैं धर्म करते बोलना समझता है कोई पुरुष, हम हमें जानेगा हमने मैं ले जाए करते इसको क्या करते हैं से बोलना, ये वैष्णव वैष्णव के लिए और ऐसा भी नहीं कि भीतर में छुरी लगते हुए बात से बड़े मीठे लोग, ऐसा भी नहीं। नम्र हो अंतर और बाहर हो, ये सब गुण आना चाहिए, तो फिर भजन होना बड़ा भारी कठिन। भीतर प्रयास के बाद में कड़े स्टॉप पर अब वो आकर के घर में कुछ ऐसा ही कर, भीतर ना बैरा, पहले था बैरा के बाहर में, अब उनका बैराग्य हुआ कहां। हम लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए, भीतर में बैराग्य और बाहर में ऐसे ही हम लोग को भी रहना चाहिए, भीतर में बैराग्य हो विशेष। ऐसा नहीं कि फल्गु नदी में जैसा होता है, भीतर में पानी बहता है ऊपर में बैराग्य दिखता है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं। भीतर में बैराग्य हो बाहर में लोग समझ न सके और अपना भजन काम कर सके, ऐसा होना चाहिए। विशेष करके गृहस्थों के लिए ये बतला है, त्यागियों के लिए परम काष्ठा का मथुरा जी के प्रभु आइया बाता जले पाईया प्रभु पाते शनिवार हिन्द काली गुरु करें एक वृक्ष देखा इत्यादि हुआ। तो हर थोड़े ये सब का विवरण कल आप लोगों ने सब सुना, नित्यानंद गुरु की कैसे कृपा में पर हुई ये भी आप लोगों ने श्रवण किया। कि नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से महाप्रभु जी को उन्होंने पाया, महाप्रभु का निकट आए तो महाप्रभु जी ने उनको 12 दिन एक महीने का पर्व उन्होंने 12 दिन में तय किया और 12 दिन में भी 3 दिन के और खाया। क्यों नहीं खाया, मधुकरी इत्यादि ले सकते कुछ नहीं, उनको याद ही नहीं रही, जल्दी से जल्दी तो किया। ऐसा हम लोगों को भी होना चाहिए, भगवान से मिलने की कंठा इस पर निर्भर करती है। प्रभु ने कहा हमको देखते ही सुख सब आज सब भक्त का ने चरण बन दिया है, प्रभु कृपा देख सब एक आलिंग ग्रहण करता है। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हो तुम्हारे काली में विषय निष्ठा ग्रंथ हो, विषय ग्रंथ से तुमको निकाल दिया। रघुनाथ कहे मने बाद में नहीं कहा, अभी लग जाए कृष्ण नहीं जानी तो कृपा का हमारा यही जान लिया। प्रभु कहें कुमार पिता ज्येष्ठा दुई जने चक्रवर्ती संबंधे हमी आजाद परिवार, चक्रवर्ती नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती और उनका यद्यपि वो ब्राह्मण थे ये लोग कास्ट थे तभी भाई का संबंध है, मित्रता भाई का संबंध वो होता है गांव में, कोई भी जाति उसमें नहीं मतलब संबंध होता है वैसे। तो वही कह रहे हैं जिसमें तुम्हारे पिता को आजा करी मान चक्रवर्ती संबंध है आनी आजा करी
आजा मैंने दादू
नीलांबर चक्रवर्ती वो नाना है तो ये भी नाना है नानी नाना
मायर बाबा के
चक्रवर्ती दुआ है रात्रि उनको दास रात्रि किंतु दास ये लोग दोनों अपने को उनका दास समझते इनका नीलांबर चक्रवर्ती का ब्राह्मण है विद्वान आदमी है भक्त है अतएव तारे आमी कोरी बोलता इसलिए दादू हमारे हैं नाना नाना के साथ में लड़के का सुसादान प्रदान रहता हास्य परिहार से दादू भी उसके साथ में छठा दिलगी ये सब करते हैं ऐसे जी। महाप्रभु जी जब सुना यज्ञ के पिताजी के द्वारा भेजे हुए पैसे के द्वारा और ब्राह्मण के द्वारा प्रसाद नहीं दे रहे हैं और वहां पर ही छोड़ दिया सिंह दरवाजे का तो बहुत प्रसन्न होकर के महापुरुष जी कहते हैं भालो पैदा वैरागी धर्म आचर्य गुरु वैष्णव शिष्य प्रशिक्षका यह देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि कोई उन्नत होता है भजन कोई करता है ठीक से भजन करता है तो देख करके बड़े प्रसन्न होते तो महाप्रभु रघुनाथ जी का व्यवहार देख करके उनका वैराग्य देख करके भजन की निष्ठा देख करके बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे भालो पैदा वैरागी धर्म आचर्य किसे पूछा अपने गोविंद जी से गोविंद ये बतलाते चले जा रहे हैं कैसे अपने पिताजी का वो छोड़ दिया फिर वहां जाकर के मांग करके खाता था बाजार में वो भी छोड़ दिया और वहां से फिर सुंदर दरवाजे पर जो भोजन करते थे वो भी छोड़ दिया बैरागी कर दे सदा नाम संकीर्तन आप लोग अपने को बैरागी समझेंगे ये वैराग्य विषय है बैरागी कर दे सदा नाम संकीर्तन कैसा नाम संकीर्तन करेंगे प्रेम के साथ में नाम संकीर्तन मांगिया खाइया करे जीवन यापन किसी प्रकार से जीवन यापन करें यहां तो सब प्रकार की सुविधा है अपने आप लोग दे जाते हैं इसलिए कुछ गड़बड़ी है यदि ये व्यवस्था होती ये मांग करके आओ खा करके यहां पर आ जाना प्रवचन सुनना और अपने अपने अलग अलग सब रहना तो एक तरह से ठीक होता तो अनाधिकारी लोग नहीं आते किंतु तो प्रभुपाद जी बड़े दयालु थे हमारे गुरु जी बड़े दयालु थे इन लोगों ने उस व्यवस्था को एकदम उलट दिया क्योंकि उस व्यवस्था में बहुत दोष आ गया था सज्जा कफी ढेकी त्यागी सब हो अब हम लोगों में भी आता हूं जा रहा कोई थोड़ा सा धर्म नहीं देता कोई कोई कुछ भी नहीं करता पैसा जमाने में लग गया अब छल बल से भक्ति ये काम को लाएंगे वो ना ला करके ये सब आने तब प्रभु ने कहा अच्छा रखो रखो आप लोग चेष्टा करेंगे महाप्रभु जी के इन गोपाल रघुनाथ दास गोस्वामी के ये उपदेश आप लोग सभी लोग ग्रहण करें चाहे त्यागी हो और चाहे बयागी कर दे सदा नाम संकीर्तन
वर्तमान समस्या समाधान किसी अब
क्या होगा जो व्यक्तिगत रूप में भजन करने की चेष्टा करेंगे उनका भी सांघिक रूप में होना बड़ा कठिन कोटि महामुनि कोटि कोटि लोगों में महाप्रभु स्वयं आए थे उन्होंने काल को स्तंभित कर दिया और उनके प्रभाव से सब लोगों को भजन में लगा दिया आज बड़ा जरा कठिन है आजकल गुरु की बात ही शिष्य नहीं सुनता
आगे जमन विवेकानंद धारा चला गोष्ठानंद धारा तो उभयटार मध्ये गंडगोल असल्याने
अब तो गुरु गड़बड़ हो गया अब गोष्ठानंद जैसा पहले हम लोग को गुरु जी के सामने हमने देखा कहां समय उसको नदी बहा देगा उन लोगों को इधर में कुछ गुरु जी को कभी भिक्षा मांगते हुए हमने नहीं देखा उनको कोई एक साथ में 10,000-5,000 रुपया आज तक नहीं दिया न उन्होंने बिना पैसे का ही उन्होंने ये सब आरंभ किया उनके पास में 1,000 रुपया नहीं था जो इनको दे खरीदना बताओ निस्वार्थ रूप में केवल मात्र भक्ति के लिए मान अपमान कितना सहा तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते चिचुड़ा में क्या क्या हुआ हमने देखा एकदम शरीर में आग लग जाती थी वो सब बाहर के लोग उनके साथ में एक बार व्यवहार नवदीप ने भी वहां के घोष और ये सब लोग किया सब सज्ज करके भगवान का भजन इसलिए वो लोग टिक सके भजन में और हम लोगों को भी ला सके बताया कि कर दे सदा नाम सुना मांगिया खाइया करे जीवन जापन इसी प्रकार से जीवन जापन अभी हम सुनते हैं कोई कोई लड़ते हैं जैसे आज रोज रोज वही तरकारी रोज रोज वही बात वो सुखी बात कोई सड़ी गली तरकारी कोई कुछ कोई कुछ माधुरी मांगने जाएंगे तो दे देगा ना পুরি হলুয়া রাবড়ি, হ্যাঁ দেগা রাবড়ি হালুয়া, তো কেসা দেগা? আপনি বচ্চে কো এসে করকে ভলাইয়া কাপ উসমে ডাল করকে দে লে যাও, দেখনে কি তো শক্তি হ্যাঁ নেই, ভজন নষ্ট হো যায়গা। इसलिए किसी प्रकार से जीवन निर्वाह हमको करना है, यहाँ पर सब सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं लेकर के आप लोग सभी लोग भजन करें, आप लोग भी वैसे ही भजन करें। बैरागी भैया जीवा करे परापेक्षा, परापेक्षा कार्य सिद्धि नए कृष्ण करें न उपेक्षा, बैरागी होकर के दूसरों की अपेक्षा करता है, माने क्या? ये जो विषय आदमी है इसको यदि हम घुमा दिया इधर उधर तो जरूर 50-60 रुपया दे, इसका मनोरंजन करना आजकल यही हो गया, इससे से बचने की चेष्टा करो, स्पष्ट स्पष्ट अपना भजन करो, पर अपेक्षा मत करो, पर अपेक्षा करना है तो गुरु जी की अपेक्षा करो, भगवान की अपेक्षा करो, भक्ति के लिए अपेक्षा करो, ये गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं होने से हमारा भजन नहीं होगा, इसलिए भजन के लिए उनकी ही अपेक्षा, संसारिक वस्तुओं के लिए भोगों के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करना, विशेष करके बैरागी लोग, त्यागी लोग, क्यों? वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, वो कहेंगे हमको ये थोड़ा सा खराब बजाज करवा दीजिए तो आपको जान को थोड़ा सा बजा लो, क्या करना है तारीख खींचना है और सब करना, तो तुम लोग जाएगा सारी उनका खरीदवाने के लिए उनके पीछे पीछे, ये सब नहीं, भगवत भक्ति उनके अंदर में कुछ दे सके इसके लिए इसलिए दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को अपेक्षा करते 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 जीवन नष्ट हो जाएगा। बराबरी है यहां पर जीवन लालस परमार्थ जाए आज हय रस बराबरी को करके ये काम खाएंगे आज ये नहीं तो क्या होगा, रस के बस न होकर के भजन दूर हो जाएगा, माँ देखे जाएंगे तो कहेंगे रोज सुखी रोटी सुखी रोटी और बिना नमक के देती है, कहे जा कहेंगे वहां माँ टुकड़ी लेने में यहां जो मिल रहा है सहज रूप में यहां पर तो हजाम नहीं खाए उसको फेंक देते हैं, बिगड़ते हैं झगड़ते हैं, इसलिए ये सब न करके भगवान का भजन करने की चेष्टा करो, बराबरी होकर के जो जीवा के लालच में होकर के रहता है उसकी जीवा भाग जाती है, भजन नहीं होता। हम लोग को सन्यासी में पहले ऐसा नहीं होता, जो आग नहीं जलाएंगे निरग्नि होते थे, जो कुछ रूखा सूखा मिल गया कर पात्री करने के लिए बस, और एक दरवाजे से दो दरवाजे में नहीं मांगा, थोड़ा सा देकर और अंधकार हो जाए पर जो किसी का मुख न देखेंगे, अंधकार हो जाए गया बस, उनका रूखा सूखा जो बचा हुआ है बस उसको दे दिया।
तो नैमिषारण्य के युगाश्रम के एक साधु ऐसे बोले, एक सन्यासी बोले कि ऐसे हम लोग निरग्नि है किंतु हमारा चित्त मलिन हो जाता है, सबके हाथ का खाना पड़ता है,
कोई
जो कुछ दे देता है खाना पड़ता है,
मैंने ऐसा नियम था किंतु सब नियम अच्छे के लिए बनाया जाता है, पीछे से उसमें दोष आ जाता, बनाया गया नियम अच्छा के लिए किंतु उसमें दोष आ जाता है, फिर कोई महापुरुष आया उसको सुधार, प्रभुपाद जी ने उस नियम में सुधार किया, ये सब लड़के सब जो भगवत भजन नहीं करते हैं जैसा कुछ भी होगा उनको हम भजन का कुछ जरूरत नहीं है, उनमें थोड़ा सा संसार की वासना इत्यादि वो भी हरि कथा के द्वारा हो जाएगी, उसमें अभी नया नया प्रयोग था सब बड़े अच्छे प्रभुपाद के समय में देखो जी और प्रभुपाद के जाते नहीं है कैसा, अभी विचार करके देखो कितने हम लोग हैं इसमें, कितनी निरपेक्ष रूप से निष्कपट रूप से भजन करने वाले, विचार करने पर देखते हैं गोभी का पत्ता सब जैसे हम निकल जाता है, बस इसलिए कहते हैं कि भाई बैरागी होकर के जीवा की लालसा मत करो, परमार्थ जाए यार भैरव से बैरागी कितने सदा नाम संकूप खूब अच्छी तरह से समझो करो। लिखा हमने 10 बार पढ़ाए 50 बार पढ़ाए ऐसा मत समझो, कितना पर इसने अमल किया हमने इस पर विचार। पाक सात पत्र फल खुले उदर पर, सात पत्र फल खुले, कोई कला दे दे तो उसको फेंक देते हैं, नहीं रबड़ी हम उनको दे और कोई दूसरा दे दे सब छोड़ करके भगवान का भजन करो। जीवा लालच से जो इति उति जाए, जीवा के लालच से जो इधर उधर जाता है तो वो क्या होता है, शिष्ण उदर पर कृष्ण, वो कृष्ण को नहीं पाता, शिष्ण उदर इत्यादि हो जाता। इनको गंभीरता से लो भजन करने के, गंभीरता से लेकर के भजन करो। हमारा शरीर बहुत खराब हो गया, ठीक है शरीर खराब, क्या खराब हुआ, शरीर होने से खराब क्या हुआ, मन देखो जो कैसा है, मन पर आत्मा पर विचार करो। जिसका शरीर खराब है कुछ और मन निर्मल है आत्मा निर्मल है तो उसका क्या बिगड़ा, अरे मरना तो है नहीं मरेंगे, फिर जैसा कर्म है वैसा हमारा चलता है, मन को निर्मल करने की चेष्टा करो। आज हमारे पास में एक सगरे आदमी आए कि कल शाम को आए, तो यहाँ पर विकलांगों की सेवा के लिए हम लोग बड़ी भारी संस्था किए हुए हैं, उसमें उनको चेयर देंगे, उनको पैर देंगे, हाथ देंगे और सबकी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने कहा कि इससे सबसे बड़े विकलांग तो आप, वो डॉक्टर हैं और बड़ा शुद्ध अच्छे है, मैंने कहा विकलांग तो आप हैं तो कैसे, ये तो आप बतलाइए, विकलांगों की आप सेवा कर रहे हैं ठीक, बहुत अच्छी बात है विकलांगों की सेवा, क्यों विकलांग क्यों हुआ, जन्म से ही उसका पैर टेढ़ा था, जन्म से ही रीढ़ नहीं गई, जन्म से ही आंख नहीं गई, जन्म से दरिद्र घर में पैदा हुआ,
बुद्धि कौन,
कोई जन्म से ही पागल हुआ, या कोई 10 आदमी है पूर्व में लड़ाई कर रहा है, एक ने उसको गोली मारी तो एक आदमी को लग गया और तो किसी को क्यों नहीं लगा जो उसी को लगा, वो विकलांग कैसे हुआ। एक आदमी चोरी करने जा रहा था और गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको मार करके दोनों पैर तोड़ दिया, वो विकलांग हो गया। अब आप उसकी सेवा करेंगे ना, विकलांग तो है ना, बदमाशी करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा, गांव वालों ने मार करके लड़के आते उसके पैर तोड़ दिया, आप देखेंगे विकलांग है इसकी सेवा, वो अच्छा होकर के क्या करेगा, दूसरी तरफ अच्छा कारण क्या है, आपने विचार किया आपका भी पीछे ऐसा ही होगा या क्या होगा, आप विचार करते हैं विकलांग कौन है, मैं समझता कि आप सबसे बड़े विकलांग हैं, आप देख नहीं पा रहे अपने कर्मों से ये सब होते हैं, आप उसको सुधारने की चेष्टा कर। एक आदमी बहुत दुष्ट आदमी है, व्यभिचारी है, चोर है, बदमाश है, लंपट है, आपको वो विकलांग व्यक्ति है ना, एक लंगड़ा आदमी है किंतु भगवान का भजन करता है, बड़ा उपकारी है, उसका हृदय साफ है, दोनों में विकलांग कौन हुआ है, एक आदमी मन से दुष्ट पापी दुराचारी बदमाश है स्वस्थ है, और एक आदमी पैर से लंगड़ा है या आंख से अंधा है किंतु वो बड़ा सत्यवादी ईमानदार सत्यप्रकाशी, और विकलांग कौन हुआ, मैं तो समझता हूं उसे लाख कोटि विकलांग, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं आप विकलांग सबसे अधिक, कभी इसको विचार किया, तो उसे हम लोगों को विचार करनी चाहिए, बाह्य और अभ्यंतर बाहरी चीज इतनी बड़ी भयानक नहीं है जितनी की भयानक है, हम लोग बद्ध जो हुए किस लिए, किस लिए गए? कृष्ण से विमुखता के कारण। ये कृष्ण की विमुखता सर्व से होती है ना आत्मा से या मन से होती है? कहते इसको यदि सुधार किया जाए ये है, इस पर अधिक बोल जाना चाहिए। इसलिए अंतर निष्ठा बाह्य दुख, कोई भी आदि नहीं है, अंतर में निष्ठा भगवान के प्रति होनी चाहिए, तब तो ठीक है। इसलिए कहते हैं जीवात्मा से ये इति उति धार शिष्य उगर पारायण कृष्ण नहीं। एक दिन महाप्रभु बैठे थे, स्वरूप जी ने महाप्रभु जी को कहा रघुनाथ निवेदन प्रभु चरण, रघुनाथ निवेदन प्रभु चरण, ये कुछ नहीं मानते हैं, कहते हैं महाप्रभु जी से जाए जो कुछ कहना है स्वरूप दामोदर से गया गोविंद गोविंद और वो लोग उनसे कहते हैं। महाप्रभु के पति बहुत समृद्ध
संभव
गुरु बुद्धि है, इसलिए वो स्वयं नहीं कर सकते, जिनके हाथों में उनको समर्पण कर दिया, इसलिए वो कह रहे हैं हम भी बात कर रहे हैं। इनको वो जो बात किया ना सुबह इत्यादि उनका जी हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, आज नया देख रहा हूं
हमने कभी सुना भी नहीं।
हाँ। सुना ये सब चीजें
पाठ भी किया होगा तो कोई बात तो इतना नजर नहीं घुमाया
हमने इसको खुला देते हैं हमारे आंख में चमत्कार चीज कैसी कैसी चीजें इसमें है और हम लोग बिना अनुभव के ऐसे ही जब दृष्टि ऐसी होगी ना आंतर की वृत्ति होगी तो ये सब चीज नजर है, ये सब भजन की चीजें हम लोग उसमें से अगर भजन की वृत्ति नहीं होगी बाह्य वृत्ति अधिक रहेगी और बाह्य चीजों की इच्छा होगी तो ये चीज आएगी नहीं, हृदय में कभी स्पर्श नहीं कर सकती है, ये भजन का कुछ लक्षण है। यदि ऐसा आदमी स्पर्श करते हैं इसको समझे चेतन जिसका कितना हम पढ़ते हैं कितनी बार हजार का, किंतु अब मैं देखता हूं पढ़ता हूं तो दूसरी नजर से देखता हूं, मालूम होता है हमने कभी पढ़ा ही नहीं चेतन जिसका कोई भी चीज भजन रहस्य इत्यादि भक्त विनोद ठाकुर के जितने भी ग्रंथ हैं आप देखते हैं कि हमने कभी शायद पढ़ा नहीं था, आज भगवान की कृपा है जो थोड़ी सी देख करके ये सब भावनाएं
हैं। नवीन पूछ कहता है ये तो जन में अनुराग भावना होती है,
ये तो बात तो ठीक है, हम लोग कभी ग्रंथ आ रही है तो तुम लोगों में भी ऐसा ग्रंथ आया ऐसे खूब गंभीर विचार है उसी चीज को भी देखो। गुरु महाराज जी के साथ में मैं बैलगाड़ी पर एक जगह जा रहा था तो हिंदी में कुछ महिलाएं कीर्तन कर रही थी, ये कीर्तन ये गान सुन रहे हो? मैं उनके साथ सामने कहा जैसे फिर कान लगा तो चौंपा मैंने सुन सुन कभी नहीं सुना उधर ना हमारा नजर ही नहीं। आज गुरु जी वहीं पर बैठे हुए खाट पर वहां पर बैलगाड़ी पर तकिया उतिया लगा दिया था वो ऐसे ही देते थे और मैं उनके पीछे था, बाहु महाराज विक्रम महाराज और सब लोग पीछे पीछे आसाम में जा रहे थे, आसाम में यही पर परिक्रमा में या उनको याद या कहां पर वो कीर्तन कर रही थी महिलाएं ठेठ भाषा में ये कीर्तन समझा ये जो गान कर रहे हैं के कारण से तो उधर नहीं किंतु हमारे समझ में कुछ नहीं आया और ग्रामीण भाषा के वो कीर्तन में कृष्ण भक्ति की अत्यंत सुंदर बातें वो गा रही थी भाव की बात कनाई मैंने कृष्ण संबंधी और गोकुल संबंधी हमारे समझ में नहीं आया किंतु उन्होंने हमको जब समझाया तो मैं सोच करके और फिर विचार करके कान लगा कोई भी बात हो संसार में महापुरुषों की नजर कहां जाती है उसके भीतर ही जो बात है, कोई संसारिक चीज खूब सुंदर चीज देखा एक सुंदर रमणी देखा उनका चित्त कहां जाएगा ये जब इतनी सुंदरी होगी तो कृष्ण की गोपियां कैसी सुंदरी होंगी, उनका चित्त एकदम यहां पर रहेगा नहीं। कोई भी चीज हो, अच्छा सा कमल देख, एक मयूर को नित्य देव करते हैं, उनका चित्त वृत्ति कहां जाएगा, उसी चीज में आविष्ट हो। ये सब भजन के लक्षण। प्रभु आगे कथा मात्र ना करे रघुनाथ, स्वरूप गोविंद द्वारा कहे निर्वाद। ऐसे हम लोगों में भी होता है, होना चाहिए। जो प्राचीन जो गुरु भाई हैं उनको क्या मानना चाहिए, कभी शिक्षा ना। तो हम लोग भी गुरुजी से बहुत सी ऐसी बातें हम लोग नहीं करते थे, पीछे से तो उनका मुख लगा हो गया और प्रश्न करता था परिप्रश्न इत्यादि, किंतु ऐसा होना चाहिए। उनके जो सीनियर जो शिष्य हैं, हमारे जो गुरु भाई, उनको गुरु भाई मत समझो, उनको क्या समझो, हमारी शिक्षा। गुरु जी जिसको आदर करते हैं उसको हमको आदर करना चाहिए, ये पहले सीखो। उनसे ईर्ष्या मत करो जो उनको अधिक गुरु जी आदर करते हैं। यही सब समस्या है हम लोगों के अंदर में आ रही है, समझ में। तो इसलिए वो बोलते नहीं, इनके प्रत्येक व्यवहार में भक्ति की शिक्षाएं हैं। की मोर कर्तव्य मुई न जानी उपदेश, अपनी इसकी मुखे मोरे करुण उपदेश। महाप्रभु जी से कह रहे हैं जो रघुनाथ आपसे कुछ पूछना चाहता है, वो स्वयं आपसे क्या करना चाहिए मुझे,
क्यों
हमको घर छुड़ाया, ये पता नहीं, इसलिए कुछ अपने मुख से वो कुछ उपदेश कर। महाप्रभु जी हंसने लगे और हंस करके रघुनाथ से कहे, वहीं पर रघुनाथ जी बैठे थे, तुम्हारे उपदेश का करी स्वरूप दे देगा, तुम्हारे उपदेश का किसको कर दिया, तुमको जो कुछ भी होगा साध साधन इत्यादि समस्त विषयों में ये सब काम अगर ही तुमको शिक्षा, इसे ही तुम सब शिक्षा लेकर के काम करो। साध साधन तक तो शिखर यहां स्थाने, अमी तक तो नहीं जानी जो तुम यहां जाने, मैं जितना नहीं जानता हूं उतना ही जानते, सब कुछ जानते। अच्छा ये बात उन्होंने झूठ कहा ना, झूठ नहीं कहा, कैसे कहा, कृष्ण को ये सबसे अधिक कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये ललिता विशाखा ही अधिक जानते हैं, ये विशाखा ललिता जी हैं इसलिए अधिक हो जाते हैं। महाप्रभु जानते हैं सेवा लेना, कुछ सेवा करना भी जानते हैं, किंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको सीखना होता है, जो पीछे से उन्होंने सीखा रामगढ़ और आय रामानंद से सीखा, इसलिए यहां पर सच कह रहा हूं। यदि बात कहे मैया बेटे से, देखो तुम सेवा कैसा करना हो तो अपनी मैया से सीखो, तो ये गलत बात है कि ठीक बात है, ये ठीक बात, मैया सेवा करना जानती है, इसलिए मैया के पास में बच्चा रह करके उनको सिखलाती है बच्चों, तो वो लड़के अच्छे होते हैं। आज जो मैया की बात नहीं सुनते वो बिगड़ जाते, उनको सुनना चाहिए। तथापि हमारा आज्ञा है श्रद्धा यदि हमारे एक वाक्य तुम ही करी भर निश्चय यदि हमारे बात में ही तुम्हारी विश्वास है तो मैं तुमको बतलाता ग्राम में लखाना सुन दे, ग्राम में बताना भावना खाइए यार भावना करिए, अमानुमान भैया कृष्ण नाम कदा रे ब्रज राजा कृष्ण सेवा मानो से करी। और तो सब आप लोग जानते हैं ग्रह कथा नहीं सुनना चाहिए कभी मन नहीं मानता, ग्रह कथा नहीं करना चाहिए कभी मन नहीं मानता, तो हो जाता है। और भालू ना खाइए, ये भजन में ये विघ्न सब आ जाए, चेष्टा करनी चाहिए जाता साध इसको करने के लिए। सबसे बड़ी बात है अमानी मानव भय कृष्ण नाम का दावत, अमानी मानव होकर यदि भजन बहुत बड़ा भारी बात है, मान चाहते हैं दूसरों को मान नहीं देना चाहते, ऐसा होकर के कृष्ण नाम करो ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সদা সেবা মানুষকে করে, আর মন সে দীর্ঘা রাধা কৃষ্ণ কি সেবা করো, জিসি পরিপাটি যেগো ধর্মে ভজন ভবিষ্য মে মর চৈতন্য চৈতামিক মে রূপ সম্বাদ মে সনাতন গোস্বামী কে সম্বাদ মে রঘুনাথ দাস গোস্বামী আর রূপ গোস্বামী কে গ্রন্থ মে সব ওয়া সে সব শিখ করকে আর ইসমে লগনা চাই, কেসে মানুষ সেবা উসকে লিয়ে ক্যা ক্যা চিজ কি জরুরত হতি হ্যায়। জেসে যোগ ধর্মে প্রারম্ভ সে ব্রজনাথ জি কো অর বিজয় কুমার কো জো শিক্ষা দি হ্যায়, উন শিক্ষাও কো গ্রহণ করনে কি চেষ্টা করনি চাহিয়ে। এই তো সংক্ষেপে আমি কলি উপদেশ স্বরূপ রেখাইয়া পাবে সবিশেষ, ইয়ে মানে মন্ত্র কাজ দিয়া সূত্র অর ইস আবিষ্কার কোন इस प्रकार से ये भजन में। अब कल हम लोगों का ये शरद पूर्णिमा, आज 3 बजे करीब शरद पूर्णिमा लगी,
3:26
तो आज तृतीय पाद में लगी शरद पूर्णिमा, किंतु सवेरे सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उसी के अनुसार में ये दिन निर्णय किया। वैष्णव विद्या विशेष करके पालन करने के लिए की, तो आज 3 बजे के पहले तक तो ये 3 बजे तक तो था चतुर्दशी और उसके बाद में पूर्णिमा लगी, इसलिए वैष्णव लोग जो है सदाचार संपन्न शाश्वत रीति के अनुसार आज इसका पालन नहीं करके कल करें। स्मार्ट लोग देखते हैं कि आज रात में क्या चीज, रात में आज चंद्र पूर्णचंद्र निकलेगा, इसलिए कल रात में पूर्णचंद्र नहीं रहेगा, पता लग जाए 3 बजे के
बाद। तबई वास न जीवा मितया बिना राधे तमाम गुरु परंपरा लिखा इसके बाद वाला, इसके बाद में उन्होंने लिया स्वर्ग दामोदर, उसके बाद में रूप सनातन, इसके बाद में जीव रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर, उसके बाद में लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण जगन्नाथ दास बाबा जी, और उसके बाद में गौकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्त विनोद ठाकुर गौकिशोर दास बाबा जी महाराज, इसको कहते हैं भागवत परंपरा, भागवत गुरु परंपरा, और एक होता है शिष्य परंपरा। इन्होंने गुरु परंपरा ग्रहण किया, भागवत गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा नहीं। शिष्य परंपरा उसको कहते हैं और गुरु परंपरा भागवत परंपरा कहते हैं। भागवत परंपरा में सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध लोग, और आचार प्रचार करने वाले आदर्श गुरु वर्गों को ही उसमें लिया गया। इसमें असिद्ध नहीं है कोई, यदि ब्रह्मा से आज तक रखा जाए तो शिष्य परिशिष्य में हम समझते हैं कि 10,000 ग्रंथ भी लिखे जाएं केवल शिष्य परमंत्र नाम उसमें नहीं आए असिद्ध वाले। जैसे हम लोगों के गुरु महाराज जी हैं, हम लोगों के गुरु महाराज जी के कितने शिष्य हैं, वो तो सभी शिष्य है ना। अब उनके शिष्य और शिष्य का शिष्य प्रशिष्य और उसका भी शिष्य यदि रखा जाए तो कितना लगेगा, लिखने में कहीं अटेगा ही नहीं। इसके बीच में कभी कभी हो सकता है 4-5 परंपरा पीछे एक कोई सिद्ध महात्मा आया, तो बीच में जो असिद्ध है उसको खत्म करके उसके बाद में उन्हीं को लिया जाएगा, और नहीं तो
गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्ध गुरु परंपरा को, भागवत परंपरा को उन्होंने ग्रहण किया, जिनके आचार विचार सभी शुद्ध हैं, भजन परायण हैं, जो लोग जगत की शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के बाद में कितने सब लोग हुए, और अद्वैताचार्य के पुत्र उसमें केवल एक को लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। वो लोग आज तक उस वंश परंपरा में आने वाले को सभी को आचार्य और गोस्वामी कहते हैं, चाहे वो भ्रष्ट हो। प्रभुपाद ने इसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए गोस्वामी वही है, आचार्य वही है, गुरु परंपरा में वही आ सकता है जिनके आचार विचार शुद्ध हो और शुद्ध रूप से भक्ति का आचरण किया हुआ हो, वही लोगों को नाम दिया। शिष्य परंपरा उसको कहते हैं जो कोई गुरु है, जैसे गौरकिशोर दास द्वारा प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके एकमात्र शिष्य मैं हूं, एकमात्र मैं शिष्य हूं। और वहां के जितने बाबा जी थे वो लोग कह रहे थे कि हम लोग भी गौरकिशोर दास द्वारा महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि इनका श्री कलवर छुओ तो देखें जल करके भस्म हो जाएगा, ये तो ब्रह्मचारी आबाल्य ब्रह्मचारी थे, तुम लोग कितना ब्रह्मचारी आदमी है जरा देखें तो कोई नहीं उठा। इसलिए गुरु परंपरा में वो लोग का नाम नहीं आएगा। ये लोग खोजते हैं आजकल के सजिया बाबा जी और लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी किस से बेच लिया, उनके गुरु जी ने किस से बेच लिया, उनके गुरु जी ने किस से बेच लिया, चाहे असिद्ध हो चाहे परंपरा में आए, न करे भजन करे न करे, उसे जोड़ना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा जोड़ना से भजन नहीं होगा। रूप गोस्वामी का जो विचार लेगा वो तो उनके बाद में रहेगा, जो नहीं लिया दूसरा लोगों ने तो उनका शिष्य झूठ मूठ का नाम और मंत्र लेने से भी उनका शिष्य है। बहुत ऐसे कितने रूप कवि इत्यादि हुए जिसको जाह्नवा देवी ने मंत्र संप्रदाय से ही अलग कर दिया, उसको ग्रहण ही नहीं किया। उसी तरह से अद्वैताचार्य के सब शिष्य हैं, सहजिया लोग सब क्या है, किसी न किसी रूप में वो जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संबंध है, जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का और भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संबंध है, ये लोग कहते हैं। उनको दीक्षा मंत्र दिया, उनको बेच दिया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को, तो कैसे हो गए। जिसको हृदय ग्रहण किया, जिनकी शिक्षा और आचार विचार को लेकर के चलते हैं, वही यथार्थ उसका गुरु है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो उनके लौकिक कुल गुरु थे विपिन, उनका ग्रहण नहीं किया। किसका विचार ग्रहण किया, जगन्नाथ दास महाराज का, और वो भी 144 वर्ष तक इस महापुरुष के लिए प्रकट थे। और उनका जितना विचार धारा शास्त्र विचार उपासना पद्धति ये सब कुछ उनसे ग्रहण किया और उनको गुरु के रूप में माना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने जगन्नाथ जी का उत्तराधिकारी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, और इन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके गौरकिशोर दास महाराज जी को हरि कथा सुनाई। यद्यपि इन्होंने बेच नहीं दिया उनको गौरकिशोर दास महाराज, किंतु कपड़े देने की अपेक्षा विचार की प्रधानता है ना कपड़े की प्रधानता है, विचारधारा की प्रधानता है। इसी को कहते हैं भागवत गुरु परंपरा। और केवल कपड़ा और गले में कंठी देने का नाम, चाहे वो माने और न माने, इसको कहते हैं शिष्य परंपरा। इसलिए प्रभुपाद जी ने शिष्य परंपरा को ग्रहण नहीं कर करके भागवत गुरु परंपरा ग्रहण। वो कहते हैं
जो गोरकिशोर दास महाराज ने इनको बाबा जी वेश नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया बाबा जी वेश नहीं दिया, सखी नहीं मन, सखी नाम नहीं दिया, इसलिए यह सिद्ध है। इसलिए गोरकिशोर दास महाराज के ये शिष्य नहीं, और सिद्ध प्रणाली इनको नहीं दी। सिद्ध प्रणाली किसको कहते हैं? सिद्ध प्रणाली है तो त्रिनादपि सुनी चेन करोरपि सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। ये सिद्ध प्रणाली प्रभुपाद जी ने माना। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को जो ग्रहण करेंगे इसके बिना नाम नहीं हो सकता, सिद्ध भाव आना तो बहुत दूर रहे, भाव ही नहीं आएगा। जो जिसको कहते हैं विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व, ललिता जी की कृपा से सिद्ध देव होगा, ललिता सखी या कब सिद्ध देह दिखे, सिद्ध देह दिया किसके लिए कह रहे हैं? ललिता जी के लिए कह रहे हैं या श्रीमती विश्वानु नंदिनी के लिए कह रहे हैं? ये कृपा करके राधा कृपार बोले कबे बाल लगी, राधा जी की कृपा से वो हम लाभ करें। केवल वो मंत्र दे दिया झूठ मूठ का और खुद ही नहीं है, उनको सिद्ध शरीर की प्राप्ति नहीं हुई तो वो सिद्ध देह नहीं होगा। तो सिद्ध देह का मतलब है ये चार गुण होने चाहिए। ये चार गुण जिन लोगों ने ग्रहण किए, त्रिनादपि सुनी चेन करोरपि सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, तब वो कीर्तन करेगा और कीर्तन प्रभावे प्रभावे स्मरण होगी। स्मरण माने क्या? अष्टकाली लीला। और तब उसमें अपनी सखी देह का कीर्तन करके और तब ये भजन में आएगा। ये सब सिद्ध प्रणालियां हैं। जैसे व्यक्ति अनाचारी दुराचारी व्यक्ति आश्लो अनाचारी दुराचारी सिद्धांत ज्ञानहीन भक्तिहीन ग्रामेर एकेबारे गमार बोलो जैसे गुरुदेव हमारे सखी भाव दे, एक दिन लागबे ना ताकड़ कर जो अन्य कोनो लोग ना एके बाबा जी भेज दिए थे संगे संगे गोपने ते नहीं ताके तुम ही ललिता सखी तुम विशाखा सखी बोले दीरे और दूर कपिन दिए दीरे मंत्र दिए दीरे ऐसे वो दे ओरा बोलबे जैसे हमार गुरु छिलेन अमुक मंजरी उनार गुरु छिले अमुक मंजरी और ए रकम सम्बन्ध। हमारे रूप गोस्वामी के मंजरी भाव दिए छिलो चैतन्य महाप्रभु दिए छिलेन कथा लिखा आछे। सनातन गोस्वामी के दिए मंजरी भाव कोनो सिद्ध प्रणाली ना समय छिलो कि ना कोनो छिलो सिद्ध प्रणाली ऐ वर्तमान ही जारा बोलछे वर्तमान में जो कार्य सिद्ध प्रणाली वो सब सिद्ध प्रणाली सब कुछ नहीं। ये हुआ है कब? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद में बलदेव विद्याभूषण के बाद में ये सब सहजिया भाव ऐसा सिद्ध प्रणाली की बात नहीं। सिद्ध प्रणाली भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में लिखा है ये ऐसे होता है कि तमाम दीक्षा दिया साथ ही साथ में उनको गौर नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन हुआ। इसके बाद में नवदीप ने बाबा जी के यहां रह करके दशमूल इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की। तब उनके गुरु जी ने कहा जाओ गोपाल गुरु हैं और गोपाल गुरु के शिष्य ध्यानचंद्र हैं उनके पास में जाओ। तो वहां पर गए और वहां पर कितने दिन तक सीखा रहे और उन लोगों की कृपा से वो भाव की स्फूर्ति हुई और तब उसमें वो प्रविष्ट हुए। ये सब सिद्ध प्रणाली, उसी को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में दिया। ये किसी के लेने देने की बात नहीं, भजन के प्रभाव से गुरु उसके हृदय में सिद्ध देह इत्यादि प्रकाश करता है। कोई वो ये नहीं है, कल्पना नहीं है, वो कल्पना के अनुसार। इसलिए ये सब सिद्ध प्रणाली है, ये जो कहते हैं वो सिद्ध। जैसे तैसे आ गया गमार, अन्नाचारी, व्यभिचारी, कुछ भी नहीं जानता है कब सिद्धांत के समय। तुम लोग सब रहता ना तो तुम लोग को भी बाबा जी वेश दे करके सखी बना देंगे, सखी। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, इनको ब्रह्मचारी का वेश दिया जाना चाहिए, वर्णाश्रम के अंतर्गत मरे। संन्यास भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, इसलिए इनको देना चाहिए। देने के बाद में इनमें से जो होंगे उन लोगों को दिया जाए वो सब वेश, और वो सब प्रणाली जो जो गुरु। कोटि कोटि में से एक आदमी होगा ऐसा सिद्ध प्रणाली में आने वाला, जहां तहां बिखेर देने से ऐसे ही नहीं होता। इसलिए वो लोग सब व्यभिचारी बन गए, प्रभुपाद जी ने ये धारा किया, जिससे इसमें से कोई निकल करके तब एक बिरला ही आदमी इसके तरफ में आएगा। इसलिए मध्वर जाति की परंपरा में हम देखते हैं कि उनके चार मठ हैं उडुपी में प्रधान, और एक एक मठ में दो दो सन्यासी रहते हैं सब समय। एक यदि अप्रकट हो गया तो फिर साथ ही साथ में उनको नॉमिनेशन करके उनको कर दिया जाए, और वो सन्यासी लोग, वही जो हम लोगों का सन्यास मंत्र है गोपी भाव, उसी रूप में वो लोग भजन करते हैं। अप्रकट हो जाते एक अपने स्थान पर और कर लेंगे, किंतु किसी दूसरे ब्रह्मचारी को या सन्यासी को या गृहस्थ को वो मंत्र नहीं देंगे, बस वही आठ के आठ रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी वहां गए ग्रुप में अनुसंधान किया, जी सचमुच में मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम लोगों का कहां तक संबंध है, तो वही लेकर के आए, नोट करके उसी को सुंदरानंद विद्या विनोद समय थे एडिटर ऑफ गौड़ीय संपादक, उनको दिया प्रकाश करने के लिए। उन्होंने प्रकाशित करके पीछे से आचार्य मध्व नाम की एक पुस्तक लिखा, वहां तक तो प्रभुपाद के विचार ठीक दिए, और प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में जो उन्होंने आचार्य मध्व अथवा एक और पुस्तक है, नहीं हम बतला रहे चैतन्य, श्री चैतन्य देव, ये प्रभुपाद के समय में लिखा गया ये दोनों पुस्तक। पहले लिखा गया वो आचार्य मध्व और ये श्री चैतन्य देव बंगला में, और उसमें उन्होंने प्रभुपाद जी के विचारों को लेकर के उन लोगों से क्या हमारा संबंध है, कैसे संबंध है, ये सबको अच्छी तरह से दिखलाया। और इसके बाद में प्रभुपाद के प्रकट होने पर स्वतंत्र हो जाने के बाद में नवदीप में हरिदास दास और वही अनंत वासुदेव और एक चैतन्य चैतन्य राधा गोविंदना, ये सब क्लिक मिला करके उन्होंने ये प्रचारित किया कि मध्व संप्रदाय से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है, स्वतंत्र हम महाप्रभु जी स्वतंत्र वैभवाचार्य आचार्य। और तब से फिर धीरे 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 कुछ लोग उनकी बातों में आकर के इसको अस्वीकार करने लगे कि हमारा नहीं है। किंतु भक्त विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद और कितने गौड़ीय वैष्णव हैं, राधारमण के गोस्वामी आज से 150-200 वर्ष पहले उनका राधारमण चरण उनका नाम था, उन्हीं के वंश में मधुसूदन गोस्वामी और ये सब हुए। आज से करीब 150 वर्ष पहले हरिश्चंद्र थे काशी के, उनके शमशान में तो उन्होंने चैतन्य चैतन्य की हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी पद तैयार हुआ और उन्होंने गुरु परंपरा लिखा है। वो ठीक वैसा ही परंपरा लिखा है जैसे कि कवि कर्णपुर ने और हमारे बलदेव विद्याभूषण जी ने जो परंपरा है उसी को स्वीकार किया। राधा रमण चरण दास ने, राधा रमण क्या नाम है तत्राड़ी जी, राधा चरण गोस्वामी, उन्हीं की वंश परंपरा में। अब इसमें से ही आधुनिक काल में बहुत से वहां पर गोस्वामी लोग हैं, उन गोस्वामी से एक पुरुषोत्तम गोस्वामी और उनके लड़के श्रीवत्स ना क्या वो लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं और बाकी जितने हैं वो सब मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के मध्व से संप्रदाय। अभी कल एक प्रोसेशन निकला था, कहा था जी पता लगाना नहीं लगाया, जैसे करीब 250-300 आदमी मध्वाचार्य जी का लेकर के आलेख देकर के और उनका आविर्भाव तिथि मना रहे। हम लोग को पता चलता तो हम लोग यहां से सब लोग मिलकर के चलते उस प्रोसेशन। तो इस तरह से गौड़ीय वैष्णव का संपर्क हमने कल बतलाया था, ये केवल थोड़े से मतभेद के लिए ही गुरु को नहीं बदल देंगे या संप्रदाय को नहीं बदल देंगे, बहुत से कुछ विचार लेकर के मूल विचार होना चाहिए प्रभु और दास का संबंध ये ठीक होना चाहिए और भक्ति का विचार ठीक होना चाहिए, 9-10 मूल को ग्रहण करना चाहिए। वेद शास्त्र पुराण ही हमारे मूल प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके अनुसार में यह प्रमाणित होता है कि हरि परम तत्व है, वो अखिल रसामृत सिंधु है, वो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से जीव दो प्रकार के बद्ध और मुक्त निकले हैं। बद्ध जीव संसार में पड़ा हुआ है भगवान से विमुख और मुक्त जीव भगवान से विमुख हो भगवान की सेवा प्राप्त करके उनकी सेवा कर रहा है। जो बद्ध जीव है उनमें से भजन करके बद्ध मुक्त होंगे, साधन सिद्ध होंगे और जो नित्य सिद्ध जो है तो ही है। जीवों के साथ में जगत के साथ में भगवान का अचिंत भेदाभेद संबंध है क्योंकि उनकी शक्ति से ये निकले हुए हैं। असल भेद अभेद ये सब जो कुछ है ये निर्भर करता है शक्ति और शक्तिमान में। जब शक्ति में भेद और अभेद होगा तो उससे प्रकटित जो चीजें हैं जीव और जगत, तटस्थ शक्ति से जीव और माया शक्ति से ये जगत प्रकटित हुआ है, प्रकटित हुआ है। तो इस तरह से इनके साथ भी वैसे ही संबंध होगा भेद और अभेद, और ये भी अचिंत भेद अभेद होगा। अब जोर से हम बोलते पार देंगे और आरोप सिद्धा भक्ति और संग सिद्धा इन सबको जान करके सुद्धा भक्ति का अनुष्ठान करने से श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन करने से धीरे 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 भक्ति देवी का आविर्भाव होता है, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अंत में प्रेम होता है। ये सब विचार हैं, इन विचारों को ही ग्रहण करके हम लोग भक्ति पा सकते हैं और अपने सिद्धांत में संप्रदाय में हम लोग प्रतिष्ठित हो सकते हैं। मध्वाचार्य जी का विचार लेकर के हमारे इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने दिखलाया कि कोई भी भेद नहीं है, न साधन का है न साध्य का, थोड़ा सा वैशिष्ट जरूर है किंतु भेद कहीं नहीं है। वैसे तो चारों संप्रदाय में कोई भेद नहीं है परस्पर, किंतु फिर भी कुछ वैशिष्ट है, किंतु इनके साथ में हम लोगों का बहुत कुछ ये मिलता है। इसलिए मध्वाचार्य जी को ही हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने, उनके परिकरों ने और उनके पीछे से आने वाले लोगों ने सब उनको ही ग्रहण किया। अधिक बोलने से जो से बोलना की संभव
आलोचना हुई, ऐसे ही आलोचना की क्षण कीर्तन की जरूरत, ऐसे उत्साह के साथ लोग श्रवण करो और विचार पूर्वक गंभीर विचार से उसमें सुनो और वैसा ही आचरण। हमारे तीन गोस्वामियों का मैं संक्षेप में कोई एक बात बोलूंगा, हमारे तीन गोस्वामियों का तिरुभाव सीखी है। बच्चों ने यह ठीक बतलाया, आविर्भाव और तिरुभाव दोनों एक ही तात्पर्य पर है। जिसके लिए आविर्भाव तिरुभाव, आविर्भाव से भी तिरुभाव का महत्व अधिक है, क्योंकि तिरुभाव में उनके समस्त गुण, उनके सारे उपदेश, चरित्र इत्यादि उस समय स्मरण होते हैं। इसलिए तिरुभाव में उस समय तिरह उत्सव में अधिक कुछ काम के लिए। दूसरी बात, ये तीनों जो गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और तब कविराज गोस्वामी, इन तीनों के ही बात क्या हम ऊपर से लेकर के प्रभुपाद तक हम विचार जब करते हैं, यद्यपि ये साधकोचित साधन भजन भी प्रकाश करते हैं, किंतु इनका उद्देश्य क्या है भजन का, जितने भी हैं क्या उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव लेकर के आए थे, इसलिए वो कृष्ण कृष्ण करते हैं, किंतु हमारे गोस्वामी लोग क्या करते हैं। कोई भी गोस्वामी हो जो कृष्ण के तरफ में झुके हुए हो, कोई भी साधन भजन किस लिए करते हैं, प्रेम प्रयोजन सभी करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी और आज तक के जितने भी हैं सभी लोग आचार्य लोग कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन। तो वो कृष्ण जो प्रेम है, गोल कोई निर्विशेष चीज तो है नहीं, क्या चीज है। राधा जी की और कृष्ण की जो पांच प्रकार की सेवाएं बतलाई जाती, पांच में से तीन ब्रज में और तीनों में प्रधान किसको बतलाया, नाम मधुर रस को, गोपी के भाव को, राधा जी के भाव को। मन शिक्षा ही क्या है, मन शिक्षा में तो इस बच्चे ने बतलाया, समस्त पद्यों में ही उनका उद्देश्य रागानुगा का भजन से आरंभ करके राधा कृष्ण की और उसमें भी राधा जी की एकांत अनुगत्य की बात क्यों करी, की बात करी। हमारे रूप गोस्वामी ने आरंभ किया कहां से, बाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम, यहां से आरंभ किया और अंतिम में क्या ले गए, इंद्र नारद इत्यादि परम जो उच्च कोटि के भक्त लोग हैं, प्रेमी भक्त हैं, क्या कहा, प्रेमी प्रेष्ठ आदि जो परम प्रेष्ठ हैं उन लोगों के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम प्रेष्ठ अपि असुलभम, उन राधा जी के चरणों में हमारी भक्ति। और जैसे राधा जी कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे उनका कुंड भी उनका अत्यंत प्रिय है, उसका स्वरूप है राधा रानी कुंड का, इसलिए कुंड हमारे ऊपर में प्रसन्न हो माने राधा रानी, इसलिए राधा कुंड की सेवा ही हमारे जीवन की और वहीं पर बस्ती हमारी सबसे सर्वोत्तम बस्ती है, यही उन लोगों से प्राप्त है। राधा कुंड का श्याम कुंड और राधा कुंड होने पर भी महत्व दिया। गोपाल भट्ट जी का भी देखो, गोपाल भट्ट की कृतियों में यद्यपि हरिभक्ति विलास है किंतु हरिभक्ति विलास उनका सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। उनका सबसे श्रेष्ठ कृति क्या है?
षट
संदर्भ की कारिकाएं, जिस पर हमारे जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भ का बड़ा भारी महल खड़ा किया, किंतु भित्ति इत्यादि जो की थी वो सब
गोपाल भट्ट
जी गोस्वामी की थी, और उसके ऊपर में उन्होंने विभाग कर दिया विषय और कुछ और भी श्लोक महाप्रभु और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के लेकर के उन्होंने षट संदर्भ जैसा उज्ज्वल एकदम नक्षत्र तैयार किया, जिसी के आधार पर चैतन्य चैतामृत लिखा गया। चैतन्य चैतामृत का आधारशिला क्या है? षट संदर्भ। एक आदमी ने ऐसे गुरु जी से कह दिया समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ चैतन्य चैतामृत हो, तो वो बिगड़ गए। बिगड़ करके बोले नहीं, इसका मूल भी है, मूल है वो षट संदर्भ है, रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं। यद्यपि बीज से अंकुर और अंकुर से पेड़ और पेड़ से पौधे और फल लगते हैं, किंतु मूल चीज क्या है?
बीज।
वो बीज है, बीज ना रहे तो ये पेड़ ही नहीं होता, इसलिए बीज की प्रधानता सब समय माननी पड़ेगी। इसलिए कृष्ण ये गोपाल भट्ट जी की सर्वश्रेष्ठ कृति ये सत्संग इत्यादि की ये सब भित्ति स्थापन करना है, जिसके ऊपर में जी गोस्वामी ने ये सब बाकी भक्ति हरिभक्ति विलास गृहस्थों के लिए बनाया गया, त्यागी लोगों के लिए नहीं बनाया गया, बैरागी लोगों के लिए नहीं, किंतु बैरागी लोगों की उसमें श्रेष्ठ अंतिम बिंदु तक उसमें निष्ठा रहनी चाहिए त्यागी लोगों की, क्योंकि त्यागी लोग इसको करके तब पीछे आएंगे, बैराग्य स्थिति में आएंगे। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा गया उपदेशामृत के ये पांच छह श्लोक जो पहले बारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि ये गृहस्थों के लिए, किंतु हाँ ये होगा वैराग्यों में क्या होगा, उनके जीवन में ये सब प्रतिष्ठित रहेगा चरम सीमा तक, क्योंकि उन्हीं में ये सब शिक्षा है। इसलिए श्री विग्रह सेवा और जो जितने ये सब व्रत त्योहार इत्यादि किए हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रति सेवा में लोभ उत्पन्न हो। यदि राधा और कृष्ण के राधा माधव के प्रेम में उनका लोभ नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार का हो जाएगा, इसलिए मूल तत्व वो है, इसलिए लोभ उत्पन्न कराने के लिए ये सब किए गए। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए और जो त्यागी भक्त जो गृहस्थों जैसे ही हैं, बहुत से ऐसे त्यागी तो बहुत क्या क्या हम समझ लें 99% लोग ऐसे ही हैं जो कि उस अधिकार के अनुसार में गृह नहीं छोड़ा, उसी में रहते हुए ही घर को छोड़ दिया। इसलिए सभी लोगों के लिए हरि भक्ति विलास ग्रहण करना चाहिए, उसके विचार होना चाहिए ठीक से, उसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए। एकादशी इत्यादि व्रत का जैसे बच्चे ने कहा ये सब चीज को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु एकादशी इत्यादि का मूल उद्देश्य जैसे साधारण समाज में स्मार्ट समाज में एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं और सब व्रत करते हैं, ठाकुर जी का अर्चन भजन करते हैं, दीक्षा होती है, वैसे हम लोगों में नहीं है। हम लोगों का मूल उद्देश्य जैसे मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उपदेशानुष में रूप गोस्वामी ने और हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने सारे पुस्तकों में, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसे ही अपने सारे ग्रंथों में जैव धर्म में लिखा, किंतु अंतिम बिंदु लेकर के कहां लेकर के छोड़ा? राधा को बांध की पाल्य जाति के रूप में लिख दिया। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ने से कोई भी विश्व का ऐसा आदमी नहीं है जो अच्छी तरह से वो पढ़े और उनको राधा कृष्ण के चरण में प्रेम नहीं होगा, ये कदापि हो नहीं सकता। यदि नहीं होता है तो वो न तो साधन किया न भजन। कहते हैं सफल साधन श्रेष्ठ एक पंचम कृष्ण प्रेम जन्माय एक पांचे, वो जरूर होगा वैष्णव के रसिक वैष्णव के साथ में, तत्वज्ञ वैष्णव के साथ में, हमारे संप्रदाय के किसी भी तत्वज्ञ वैष्णव के साथ में, उनके अनुगत में कोई भजन करेगा और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम सेवा में उनका लोभ नहीं होगा, ये कदापि हो नहीं सकता। इसलिए इसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। निसंशय होकर के हम भजन करके उसी उद्देश्य को अभी से वो उद्देश्य एम ऑन ऑब्जेक्ट रख करके हम जितना भी साधन भजन वैष्णव का चरित्र आलोचना इत्यादि करेंगे जरूर हम लोग उसके यही उद्देश्य रख करके हम लोगों को चलना है। कभी भी इसमें संशय इत्यादि की बात मत करो। हाँ यदि वैसे लोग वैसा कहते हैं तो चुपचाप सुन, बस इतना ही कर। गुरुजन भी कहते हैं किंतु हम लोगों को उद्देश्य जीवन का यही राधा कृष्ण की प्रेम सवारी हमारे जीवन का उद्देश्य। चैतन्य चेतामृत भी देख लो, कृष्णदास कबीर अगर गोस्वामी ने कह दिया, रघुनाथ दास जीवन का जीवन चरित्र देखो, प्रारंभ से ही उन्होंने महाप्रभु का जब संग पाया और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु का संग पाया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका संसार दूर हो गया और महाप्रभु के चरणों को अनायास ही पा गया, बहुत जल्दी से पाया। और उसके बाद में कितना वैराग्य, कितना कठोरता उनके भजन में, किंतु उनके भजन का चरम लक्ष्य क्या किया देखा, उन्होंने दिखाया कुष्मांजलि इत्यादि में दिखाया, तवई वाष्मी तवई वाष्मी नजवा मिथोया बिना इति विज्ञान राधे तम नय मान चरण और पादाब्जयो तव बिना परदास्यमेव नन्नत कदापि समय किल देवी जाते सखायते मम नमस्त नमस्त नित्यम दास्यायते। किसके लिए? राधा जी के। और अभी जो श्लोक प्रेमानंद जी यहाँ पर बोल रहा था, तंबुलार्पण पाचन कृष्ण के लिए नहीं, वृंदावन में है स्वरी सखी प्रति दोस्तों से अंतिम प्रिया, वृंदावन की विशेष जो वृंदावनेश्वरी हैं उनके संतोष के लिए ये सब, उनकी प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए ये सब करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए, तब कृष्ण सहज में मिलेंगे। इसलिए जहां अभी देखो इसके अतिरिक्त हमारे गोस्वामियों का कोई भी उद्देश्य नहीं। यदि वैदिक भक्ति से वो गोपाल भट्ट जी वहां तक पहुंच जाते जो सालग्राम शिला भी उनके प्रेम में उनके विरह से वो राधारमण जी के रूप में प्रकट हो गए। हाँ किंतु वो बात तो हम लोगों को अमान्य है। क्या महाप्रभु? हाँ राधा और कृष्ण, राधा रमण ये ठीक दोनों मिले हुए हैं, इससे वो महाप्रभु जी मिलित तनु है, किंतु
कृष्ण जी राधा जी के लिए कुआं फेंक देंगे,
अलग छोड़ के राधा जी को कुएं में फेंक देंगे और कहेंगे जी नहीं है राधा रमण मैं हूं, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो कहेंगे देखो राधा और रमण जी दोनों मिलकर के, राधा और राधा रमण दोनों मिलकर के, ऐसा इस तरह से हो सकता, ऐसा ही होना चाहिए। इसे खुद विचार करके लोगों की बात, वृंदावन में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सबकी बातों को सुन करके हम रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की कसौटी पर कसेंगे, कस करके जब देखेंगे भक्ति मोहन ठाकुर की कसौटी पर, जबकि खड़ा उतारता है तो उसको ग्रहण करेंगे और नहीं तो उनको प्रणाम कर लेंगे। आज रात बहुत हो गई और 7 बजने वाला है, अब कल जो बाकी रह गए हैं ये सब लोग कलाचंद जी हैं, नवीन हम लोगों ने इन गोस्वामियों के जीवन चरित्र के संबंध में आज कल से और आज तक सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था और किस तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त हुए, ये चीज देखना है। वो लोग भी घर छोड़ करके इसी तरह से भजन किया हमारे तरह और कभी उनको निराशा नहीं रही, उत्तरोत्तर बढ़ते गए, किस तरह से उनके जीवन का उद्देश्य था राधा कृष्ण जीवन की सेवा की प्राप्ति। जैसे रूप गोस्वामी ने किया था चैतन्य महापुरुष के शिक्षा के कैसे भजन किया और किस प्रकार से भजन करते 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 उनकी कितनी स्थितियां हुई और अंत में कैसे किस रूप में उन्होंने पाया। यदि हमारे जीवन में ये सब जानने की लालसा हो तो हम पहले स्थिर करेंगे कि हमको क्या चाहिए, प्रयोजन क्या हमारा है, और उसके बाद में हम स्थिर करेंगे कि हम किस उपाय से उस चीज को पा सकते हैं। हमारे किसी भी गुरुस्वामी लोगों को देखो, उनमें दृढ़ निष्ठा है, करेंगे या मरेंगे। उनका वो उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु जी के आचरित और प्राचारित विमल कृष्ण अखबार था, उसके लिए क्या उन्होंने किया, प्रारंभिक स्थिति से वैदिक भक्ति के अत्यंत निम्न प्रदेश से आरंभ कर और कहा भक्ति के उच्च सोपान उत्तम महाभागवत जैसे प्रेम तक उन्होंने दिखलाया। कैसे वैराग्य होना चाहिए विषय, कैसे कभी नमक तक अपने मुख में नहीं दिया कर, ग्राम में कथा कभी जीवन में नहीं बोला, किसी भी प्रकार से विषयों के लिए लड़ाई नहीं की। हम लोगों की लड़ाई इसीलिए होती है विषयों की, किंतु उनके लिए यह समस्या ही नहीं रही कभी। लड़ाई होती है विषय के लिए, अपने भोग और लालसा इत्यादि के लिए, उनको कुछ था ही नहीं इसलिए कभी लड़ाई नहीं। इसलिए किस प्रकार से रहकर से उन्होंने भजन किया आप लोगों ने सब अभी बतलाया, वैसे ही आप लोग निष्ठा के साथ में सरल हृदय से उन चीजों को ग्रहण करने की चेष्टा, जैसे उन्होंने साधन किया था, कैसे साधन किया है ये पहले जानना होगा, इसके बाद में वो साधन करके कैसे उन्नत हुए, कैसे उनको स्वाभाविक वैराग्य हुआ, कैसे उनकी कृष्ण में अथवा राधा जी में निष्ठा हुई, इन सब चीजों को आप लोग यदि ग्रहण करें, क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, ये उपदेशामृत इत्यादि के द्वारा दिखलाया है रघुनाथ दास जी का जीवन चरित्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवन चरित्र और गोपाल भट्ट जीवन का जीवन चरित्र, ऐसे दीप्यमान चरित्रों से भरा था। आप लोगों से शिक्षा कीजिए और सच सच में उनके जीवन का अनुसरण करके भगवान का भजन पथ में अग्रसर। यदि अवकाश रहेगा कल हम लोग तो फिर हम लोग इस विषय में अनुशीलन करेंगे। अभी ये एक बेटी कीर्तन करेगी, व्रत आरंभ होगा उस दिन से। परवल परवल सीम बरबटी बैंगन इत्यादि कुछ नहीं लेना है, सरसों का तेल भी नहीं लेना। नियमित रूप में प्रतिदिन संख्या बढ़ा करके हरिनाम करना है, यह सब प्राण है उसका, नहीं खाना ये ऊपर का चीज, और भीतर में है भजन। नियमित रूप में हम श्रवण कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, साथ में हम लोग ब्रज में बहुत से ऐसे स्थान है जो मुख्य स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भजन किया था, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ विलास संज्ञाएं उसमें हम जाएंगे। जो जो जाना चाहता है या चाहती है पहले से नाम दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग एक वर्ष के अवसर है, क्योंकि ब्रह्मचारी हमारे हैं, और जो जाना चाहेगा तो पहले से लिखवा दें, नहीं तो जिस दिन जाएंगे उस दिन भीड़ होगी तब तो हम नहीं ले सकेंगे, और उस समय मन नहीं खराब करना है।